ये आकाशवाणी है। मुख्य समाचार। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ाई। दिल्ली विश्वविद्यालय कोर्ट की 91वीं वार्षिक बैठक आज कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह की अध्यक्षता में हुई। सैन्य कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हो गया है और उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ अतिरिक्त विशेष रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है। निदेशालय ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय की 6 दिन की हिरासत समाप्त होने के बाद श्री केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया गया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने उनकी हिरासत बढ़ाने के आदेश दिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कल श्री केजरीवाल को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और गिरफ्तारी तथा हिरासत संबंधी उनकी याचिका पर निदेशालय को नोटिस जारी किया था। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा कथित आबकारी घोटाला मामले में राउज एवेन्यू अदालत में दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। श्री केजरीवाल ने आज अदालत में सुनवाई के दौरान उन पर लगाए गए आरोपों पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आज दिल्ली में पहली बार अदालत को राजनीतिक अखाड़ा बनाने की कोशिश की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल द्वारा अदालत में बयान से न्यायपालिका को दबाव में लाने की कोशिश की गई। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि श्री केजरीवाल को उच्च न्यायालय से कोई राहत न मिलने पर भी आम आदमी पार्टी लगातार कह रही थी कि फैसला हमारे हक में आ गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने बताया कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू अदालत में कथित आबकारी घोटाला मामले में अपनी दलीलें रखी और कहा कि जिन व्यक्तियों के बयानों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया वे बयान बिल्कुल निराधार हैं। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली में संवैधानिक संकट पैदा करने के आरोप लगाए हैं। लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री सचदेवा ने यह प्रश्न किया कि श्री केजरीवाल का जेल से सरकार चलाने की बात नैतिक रूप से सही है। उन्होंने श्री केजरीवाल से यह भी पूछा कि यदि जेल से सरकार चलाना प्रशासनिक रूप से संभव है तो उन्होंने अपने 2 मंत्रियों सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया से इस्तीफा क्यों लिया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों के बारे में लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने में सोशल मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने ये बात विपक्षी दलों के गठबंधन की रामलीला मैदान में 31 मार्च को होने वाली रैली के लिए सोशल मीडिया कमेटी की बैठक में कही। श्री लवली ने आरोप लगाया कि भाजपा सांसदों ने दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी और मलिन बस्तियों में सुधार और कल्याण के लिए कोई भी काम नहीं किया है। कांग्रेस ने देश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोई कार्यवाही न करने पर सवाल उठाया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल पर भी सवाल उठाए जो कथित रूप से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा के सामूहिक दुष्कर्म में शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। हरियाणा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ओपी धनखड़ को दिल्ली का प्रभारी नियुक्त किया गया है जबकि पार्टी सांसद डॉ दिनेश शर्मा महाराष्ट्र के प्रभारी होंगे। विधायक अभय पटेल को तेलंगाना का प्रभारी बनाया गया है। पार्टी विधायक संजीव चौरसिया और पार्टी नेता रमेश बिधूड़ी और संजय भाटिया को उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी बनाया गया है। पार्टी विधायक नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के प्रभारी होंगे। पार्टी नेता नलिन कोहली को नागालैंड का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि कैप्टन अभिमन्यु को असम का प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों की एक अन्य सूची जारी की है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश में डॉली शर्मा को गाजियाबाद लोकसभा सीट से और नकुल दुबे को सीतापुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। झारखंड में खूंटी लोकसभा सीट से कालीचरण मुंडा कांग्रेस प्रत्याशी होंगे। मध्य प्रदेश में प्रताप भानु शर्मा को विदिशा से और राव यदुवेन्द्र सिंह को गुना संसदीय क्षेत्र से खड़ा किया गया है। राजस्थान में दूसरे चरण के चुनाव के तहत 13 लोकसभा सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के साथ ही आज से टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और बारा झालावाड़ सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बागीदौरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जहां दूसरे चरण के साथ ही उपचुनाव होगा। इस बीच पहले चरण के चुनाव के लिए राज्य की 12 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया कल पूरी हो गई। पंजाब में लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। राज्य में 1 जून को होने वाले सातवें और अंतिम चरण के मतदान की अधिसूचना 5 मई को जारी की जाएगी। अधिकतर पार्टियां अभी भी उम्मीदवारों पर विचार कर रही हैं। 2019 के आम चुनाव में राज्य में 65.94% मतदान हुआ था। निर्वाचन कार्यालय 70% मतदान के लक्ष्य को पार करने के लिए लोगों को मताधिकार के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से खास अभियान इस बार 70 पार चला रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दिल्ली विश्वविद्यालय कोर्ट की 91वीं वार्षिक बैठक आज कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कुलपति ने विश्वविद्यालय की वर्ष भर की गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। कुलपति ने इस वर्ष हुई नियुक्तियों के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि अभी तक कुल 4,556 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों के कारण अभी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। कुलपति ने कहा कि आचार संहिता हटने के बाद शेष रिक्त पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
कुलपति ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय की एक वर्ष में रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में दिल्ली विश्वविद्यालय को 73.4 के स्कोर के साथ भारत में पहला और वैश्विक स्तर पर 220वां स्थान दिया गया है। प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा कि आगामी वर्ष में दिल्ली विश्वविद्यालय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अपनी रैंकिंग में और सुधार करने का प्रयास करेगा। कुलपति ने गत वर्ष में दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिलों से संबंधित आंकड़े करते हुए बताया कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दौरान विश्वविद्यालय में कुल 69,622 विद्यार्थियों ने स्नातकोत्तर और 11,174 विद्यार्थियों ने स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। कुलपति ने यह भी बताया कि PhD में कुल 1,655 विद्यार्थियों का प्रवेश हो चुका है। विज्ञान संकाय के लिए तीसरा चरण 26 मार्च को शुरू किया गया है। उन्होंने विभागाध्यक्षों और प्रधानाचार्यों का आह्वान किया कि PhD में विद्यार्थियों की संख्या को और बढ़ाया जाए, जिससे विश्वविद्यालय में अनुसंधान को प्रोत्साहन मिल सके। प्रादेशिक समाचार के लिए मैं कनकलता।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष की संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेंस के दूसरे सत्र के परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्र शहर आवंटन की अग्रिम सूची सूचना जारी कर दी है। जेईई मेन्स का दूसरा सत्र 4 से 12 अप्रैल तक 319 शहरों के विभिन्न केंद्रों पर होगा। इनमें 22 शहर विदेशों के हैं। परीक्षा प्रत्येक दिन 2 शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दिन के 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगी। 12 अप्रैल की परीक्षा केवल सुबह की पारी में होगी। परीक्षार्थी एनटीए की वेबसाइट पर अपनी आवेदन संख्या और जन्मतिथि को डालकर परीक्षा केंद्र से संबंधित शहर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा है कि शहर संबंधी सूचना पर्ची परीक्षार्थियों द्वारा प्रवेश पत्र के रूप में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ये केवल उस शहर के बारे में अग्रिम सूचना होगी जहां उनका परीक्षा केंद्र होगा। देश के सभी विश्वविद्यालय शिक्षा सत्र 2024-25 से पीएचडी में प्रवेश के लिए अलग अलग प्रवेश परीक्षाओं के जगह पर एनईटी स्कोर का उपयोग करेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने बताया कि शिक्षा सत्र 2024-25 से पीएचडी में प्रवेश के लिए विभिन्न शिक्षा संस्थानों द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षाओं के स्थान पर राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का स्कोर उपयोग किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जून 2024 सत्र के लिए नेट आवेदन प्रक्रिया की जानकारी अगले सप्ताह उपलब्ध होने की आशा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सैन्य कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हो गया है। सम्मेलन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से हाइब्रिड मोड पर हो रहा है। ये सम्मेलन भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व को प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श का प्रभावी मंच प्रदान करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक को संबोधित करेंगे और अगले महीने की 2 तारीख को वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक को संबोधित करेंगे और अगले महीने की 2 तारीख को वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से बातचीत करेंगे। आज सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे कमान मुख्यालयों से सम्मेलन में भाग ले रहे सैन्य कमांडरों से वर्चुअली संवाद करेंगे। बातचीत में सेना के सम्मुख आने वाली समस्याओं और सैनिकों के हित से संबंधित मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। 1 अप्रैल को शीर्ष सैन्य अधिकारियों का गहन विचार विमर्श होगा, जिसमें भविष्य की चुनौतियों के समाधान की तैयारियों पर चर्चा होगी। इस सत्र के बाद सेना प्रमुख की अध्यक्षता में ग्रुप इंश्योरेंस की निवेश परामर्श समिति की बैठक होगी। बैठक में विभिन्न कल्याणकारी उपायों और वित्तीय सुरक्षा योजनाओं पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के अंतिम दिन 2 अप्रैल को प्रमुख सेना अध्यक्ष अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार और वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल।
उत्तर रेलवे ने यात्रियों के सुविधाजनक आवागमन और यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए कुछ अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। उत्तर रेलवे के अनुसार इनमें आनंद विहार टर्मिनल गया सुपरफास्ट स्पेशल रेलगाड़ी और नई दिल्ली दरभंगा स्पेशल रेलगाड़ी शामिल हैं। आनंद विहार टर्मिनल से गया के लिए चलने वाली स्पेशल रेलगाड़ी कल आनंद विहार टर्मिनल से शाम 7:20 पर गया के लिए प्रस्थान करेगी। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त हर्षवर्धन ने बताया कि आरोपी के पास 3.5 किलो गांजा बरामद किया गया है। राजधानी के कुछ क्षेत्रों में आज सुबह हल्के बादल छाए रहे, हालांकि दिन के समय धूप भी खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 3 ओवर में 1 विकेट पर 12 रन बना लिए हैं। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ाई। दिल्ली विश्वविद्यालय कोर्ट की 91वीं वार्षिक बैठक आज कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह की अध्यक्षता में हुई। सैन्य कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हो गया है और उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ अतिरिक्त विशेष रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है। और आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में इस समय दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से जारी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।